તારીખ 7/6/1996 માઉન્ટ આબુમાં થયેલ રાત્રિ ચર્ચા.
સૌનું વિશેષ જ્ઞાન ઓર સામાન્ય જ્ઞાન મોજુદ હૈ, પરંતુ સામાન્ય જ્ઞાન જિસમે વેદન હૈ, માને કે ધ્રુવ દ્રવ કા સેમ્પલ જો સામાન્ય અંગ કા વેદન હૈ, वो किस विधि से वेदन पकड़ में आता है. विशेष ज्ञान में बाह्य पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है कल्पना के कारण से, उस वक्त ज्ञान विशेष आविर्भूत होता है. उसको गौण करना चाहिए. ज्ञान में जो भी नहीं झलकते हैं उसको गौण करना चाहिए, और वही ज्ञान विशेष में ज्ञान सामान्य को देखने का उद्देश्य धारण करके देखने का प्रयास करना चाहिए. जैसे व्यंजन में नमक देखने का उद्देश्य धारण करके नमक का स्वाद को हम परीक्षा करते हैं, उस तरह से वहां वो बात की शर्त है कि लक्ष्य में स्वरूप होना चाहिए. भावभाषण पूर्वक जिसको स्वरूप लक्ष्य नहीं हो, स्वरूप का लक्ष्य नहीं हो, उसे ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हो नहीं सकता, और ज्ञान विशेष का तिरोभाव नहीं हो सकता. इसलिए स्वरूप लक्ष्य पूर्वक ज्ञान विशेष को तिरोभूत करके ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करने से ज्ञान वेदन मालूम पड़ता है, यानी पकड़ने में आता है. ये विधि है. ये विधि का विषय समय सार की 15 गाथा में चला है, विस्तार से चला है. 15 गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने वो बात कही है. सत्पुरुष में मोहाशक्ति करने से पदार्थ का निर्णय किस तरह होता है? सत्पुरुष की पहचान होने से, सत्पुरुष के प्रति उतना महिमा आता है, तो मनुष्य पर्याय को गौण करके वो उनको परमेश्वर के रूप में देखने लगता है. तो मेरे अनंत जन्म मरण के मिटाने वाला ये देहधारी कोई परमात्मा है, तो दिव्य मूर्ति उनको नजर में आती है. तो उनका दर्शन हो ऐसे उत्कृष्ट परिणामों से दर्शन में हानि को प्राप्त होता है. दर्शन में अधिक प्रमाण से कमजोर होने से ज्ञान में निर्मलता आती है, और अपना पदार्थ में अपना स्वरूप का पहचान होने की क्षमता योग्यता को ज्ञान पर ज्ञान में प्राप्ति होती है। इसलिए ये बात को यहाँ 254 पत्र में कृपालु देव ने लिखी है। मुमुक्षु का प्रतिबिंब छुड़ाने में सत्पुरुष की क्या भूमिका रहती है? मुमुक्षु का प्रतिबिंब छुड़ाने में सत्पुरुष उसको समझाते हैं कि ये प्रतिबंध से कितना नुकसान होता है, प्रतिबंध से कितना नुकसान होता है, संसार में परिभ्रमण करने का दो ही कारण है, एक स्वच्छंद और एक प्रतिबंध। स्वच्छंद और प्रतिबंध में अज्ञान कैसा है, मिथ्यात्व कैसा है, वो सब बातें सत्पुरुष से ही मिलती है। इसलिए मार्गदर्शक के रूप में इनकी मुख्य भूमिका रही और सत्पुरुष का परिचय अधिक बढ़ने से सत्पुरुष का की पहचान होने का भी अवसर आता है। परिचय बिना तो किसी की पहचान होती नहीं, बिना परिचय किसी की पहचान होती नहीं, तो परिचय के कारण से भी जब पहचान होती है तो उनके प्रति बहुमान आते सब प्रतिबंध है छूट जाते हैं। इतनी मुख्यता हो जाती है कि सब प्रतिबंध छूट जाते हैं, सहज छूट जाते हैं, क्योंकि परिणाम का भी यही विज्ञान है कि एक और अधिक झुकने से दूसरी ओर का झुकाव रहेगा नहीं। एक और अधिक झुकने से दूसरी ओर का झुकाव कहाँ से रहेगा, क्योंकि पर्याय का तो एक ही प्रकार होता है, इधर झुके या उधर झुके, दो बाजू तो झुक नहीं सकती ना। ज्ञान में जो दानंतना है वह मुझे होता है, वही आत्मा है ऐसा पढ़ने में सुनने में आता है, फिर भी पर विकार में जीव क्यों जाता है? वो जो सुना है उसकी असर नहीं पहुंची, उसकी असर नहीं पहुंची, यानी ज्ञान सो मैं हूं ऐसा अनुभव हुआ नहीं। और पर में और पर विकार में मैं पना कर रखा है, छोड़ा नहीं, यहां अधिकता फांसी है लगी है वो छोड़ता नहीं है, विकल्प कर लिया, परलक्षी ज्ञान में विकल्प कर लिया, सुना लेकिन काय में सुना, परलक्षी ज्ञान में सुना, परलक्षी ज्ञान में सुना तो इसकी कोई असर नहीं आएगी। स्वलक्षी ज्ञान में अपना इन्वॉल्वमेंट होता है, तो परलक्षी ज्ञान वाला अपने को इन्वॉल्व नहीं करेगा, यही अंतर है स्वलक्षी ज्ञान में और परलक्षी ज्ञान में, तो ये अंतर है। परलक्षी ज्ञान वाला आत्मा की बात में थर्ड पर्सन को लेता है, अपने को इन्वॉल्व नहीं करता। और स्वलक्षी ज्ञान में अपने को शामिल करता है तो जो दूसरे और परिणाम जाते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, एकदम कमजोरी आ जाती है। खटमल खटिए का मल अच्छा रखा है, ताकत तो नहीं, भगता है, भगने लगता है वो तो। हाँ ऐसे तो गद्दे का मन तो ऐसी बात है।
प्रश्न
ये कि आसक्ति टूटे तब स्वलक्षीपना आए या स्वलक्षीपना होए तब ये कि आसक्ति टूटे, ऐसा प्रश्न है। तो प्रश्न ऐसा है कि हमें सिर दर्द हो रहा है और नींद आती नहीं, सिर दर्द होने से नींद नहीं आती। अब सिर दर्द मिटे तो नींद आए या नींद मिटे तो सिर दर्द मिटे? दोनों साइमल्टेनियस है, अंधकार है, प्रकाश आएगा तो अंधकार जाएगा और अंधकार जाएगा तो प्रकाश आएगा, दोनों एक साथ होता है ना।
दोनों का झगड़ा साथ में
काम तो एक साथ हो गया, एक का व्यय और दूसरे का उत्पाद, और एक का उत्पाद तो दूसरे का व्यय। स्वलक्षीपना नहीं आएगा। ऐसा है कि सभी जीव को अनादि से परलक्षपना तो है ही। अब जिसको भी स्वलक्षीपना होता है तो कभी न कभी तो होता ही है। तो स्वलक्षीपना होता है तो फर्क पड़ जाता है, स्वलक्षीपना टूट जाता है तो प्रतिपक्ष में है ना, एक साथ होता है। जीव अनादि से दुखी हो रहा है, संसार के अनेक प्रकार के दुख को, चारों गति के दुख को भोग रहा है, परेशान हो रहा है, फिर उसको थकान क्यों नहीं लगती? वैसे तो सुख के लिए बहुत परिश्रम करता है, मजदूरी करता है कि नहीं करता है? इसका बहुत करता है। किसी को होता है, किसी को थकान लगती है वो रास्ता ढूंढता है, थकान नहीं लगी तो परिभ्रमण करते रहो। देखो थकान नहीं लगी तो परिभ्रमण करते रहो, और थकान लगी तो परिभ्रमण मिटाने का प्रयास करोगे ही करोगे। बस यहां से स्वलक्षेपना चालू होता है। जैसे कि सुविचारणा में तो दो ही बात होती है, सुविचारणा में प्रथम दो ही बात आती है। वास्तव में जीव को अपनी चिंता होनी चाहिए,
बराबर,
कि मैं क्यों दुखी हूं, सुख के लिए बहुत बहुत प्रयत्न करने पर भी मेरा दुख क्यों नहीं मिटता, मैं क्यों दुखी रहता हूं। तब शांति की जरूरत लगेगी, तभी खोज चलेगी, और खोज चलेगी तभी रास्ता
मिलेगा।
लेकिन दुखी होने पर भी दुख लगे ही नहीं तो इसका तो कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। सामान्य तौर से जहां से जहां खड़ा है वहां से आगे चलना है। नास्ति में खड़ा है तो नास्ति में से अस्थि करनी है, क्योंकि अस्थि देखी नहीं। इस तरह से सामान्य तौर से बात चलती है, फिर भी कभी अस्थि से भी बात चलती है और वो भी विचार आता है। वो सुनने करने से बात तो सब सुनने में पढ़ने में आती है, खुली हो गई है। तो वो भी विचार चलता है, क्यों कैसे, कि मुझे दुख नहीं होना, दुख में खड़ा हूं इसलिए जो मुझे दुख नहीं होना और मुझे सुख होना, तो मैं एक आत्मा हूं, वो बात तो उसमें आ ही जाती है। ये दोनों अवस्था पलटने योग्य है इसलिए पलटेगी, वो बात भी इसमें आ ही जाती है। अवस्था पलटेगी, मैं तो दुख भोगने वाला और सुख भोगने वाला मैं ही रहूंगा, दुख भोगने वाला मैं पूरा मिट जाऊंगा और कोई नया सुख भोगने वाला पैदा हो जाऊंगा, वो तो कोई बात नहीं है। तो अवस्था के पलटना और मेरा यूं का यूं रहना, वो बात स्वतः आती है इसमें, कोई अस्थि है। इसलिए नास्ति में अस्थि गर्भित है, न अस्थि इति नास्ति, नास्ति में भी अस्थि गर्भित है।
मारो क्या वही था,
मुझे सुख मिटाना है, मुझे दुख मिटाना है और मुझे सुख प्राप्त करना है। तो मेरी जो हालत है तो मैं पलटना चाहता हूं, इसका मतलब कि हालत पलटेगी, मैं नहीं पलटूंगा। वो बात इसमें आएगी कि नहीं आएगी? नास्तिका अनेक विचार करते हैं लेकिन उसमें से अस्थि मालूम पड़ती है, वही खरा निर्धार है। नाना नास्ति विचार पण अस्थि एम सूचवे, एज खरो निर्धार। लिया कि नहीं लिया? करी कल्पना दृढ़ करे ना करी नाना नास्ति विचार, एज खरो निर्धार। बहुत सी बातें लिखी हैं। कितनी गहरी नजर गई है। आखिरी प्रश्न है, किस प्रकार का बीज भाव भाषण में बोया जाता है कि सम्यक दर्शन जो पर्याय है वो मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी वापस भाव भाषण का बोया हुआ बीज द्रव में रहता ही है? वो भाव भाषण के काल में आत्मा की अनन्य रुचि पैदा होती है, गुण का प्रेम है ना, तभी तो भाव भाषण हुआ है। गुण का प्रेम होने की वजह से तो भाव भाषण हुआ है। अब गुण निधान नमद गुण का निधान अंतर में देखा भाव भाषण के काल में, तो गुण की अनन्य रुचि पैदा होगी, इस कारण से संस्कार डल जाते। वो संस्कार कभी जाता नहीं और वो संस्कार का आगे डेवलपमेंट हुए बिना रहता नहीं। इतना बलवान होता है वो संस्कार। मिथ्या दर्शन प्रगट पर्याय होने से व्यय होती है, ये तो द्रव की योग्यता होगी। तो जैसे द्रव का नाश नहीं, स्वभाव का नाश नहीं, वैसे इसी के संस्कार का भी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो द्रव का धर्म हो गया। इसलिए अर्धपुद्गल परावर्तन में निगोद में भी चला जाता है। क्यों? त्रस्का काल तो 2000 सागर है और अर्धपुद्गल परावर्तन का काल तो बहुत लंबा है, तो कोई जीव ज्यादा भटकेगा तो निगोद में भी जाएगा। गुरुदेव कहते थे
जी
कि वर्तमान में, हर वर्तमान में उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जिसको कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ वो अनादि मिथ्या दृष्टि है, और जो फिर से मिथ्या दृष्टि हुआ उसका आदि हुआ सादी मिथ्या दृष्टि है, वो फिर से शुरुआत हुई। ऐसे सादी मिथ्या दृष्टि निगोद में असंख्य होते हैं, एक दो चार नहीं होते, वर्तमान में भी असंख्य है, मैंने करोड़ों के ऊपर से इसकी तादाद है, क्योंकि तो काल बहुत बड़ा है और जीवों की संख्या भी बहुत है। तो इसलिए अपना जो कार्य है वो तो पूरी गंभीरता से संपन्न करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। इसका तात्पर्य तो वो निकलता है कि हमको हमारा कार्य पूरी गंभीरता से, शीघ्रता से पूरा पूरा संपन्न कर लेना चाहिए। चाहिए। इसके कारण से रुचि चली गई। जब मिथ्या दृष्टि हो गया तो रुचि तो स्वभाव की रुचि तो चली गई, पुण्य की और अन्य द्रव्य की रुचि हो गई, तो रुचि पर्याय होने से रुचि तो चली गई, लेकिन रुचि के कारण से द्रव्य में एक नया रिजल्ट आया। नहीं, द्रव्य में ये रिजल्ट आया, संस्कार द्रव्य में पड़ता है, ये द्रव्य की योग्यता है, पर्याय की नहीं, ऐसी बात है। हाँ, जो संस्कार है वो योग्यता है, पर्याय नहीं है। किसकी योग्यता है? द्रव की योग्यता है, पर्याय की नहीं। वो द्रव हमेशा के लिए संसार में परिभ्रमण करे ऐसा रहने वाला नहीं है, या हमेशा उसको मिथ्यात्व चालू रहे, अनंत काल पर्यंत उसका मिथ्यात्व चालू रहे, ये बात बनने वाली नहीं है। जो संस्कार नए है वो बात तो अनेक प्रकार के सभी संस्कार को लागू पड़ती है। जैसे सर्प है, उसको पूर्व जन्म का क्रोध का संस्कार है, तो उसको बिना कारण क्रोध आ जाएगा और किसी को काटेगा, तो वो संस्कार तो उल्टे सुलटे सभी के लिए है। यहाँ तो कोई पर्टिकुलर बात की चर्चा है। तो भावभाषण के काल में स्वभाव की रुचि के कारण से स्वभाव के संस्कार डल जाते हैं, वो द्रव्य की योग्यता को पलटा देता है। द्रव्य मारिया नहीं, पारिणामिक भाव तो तीन प्रकार के हैं, जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक और अभव्यत्व पारिणामिक। लेकिन यहाँ तो एक पर वो तीनों अनादि से होता है, तीनों होता है वो अनादि से होता है, और एक जीव को तीनों नहीं होता है, दो ही होता है। जीवत्व पारिणामिक तो सबको होता है, किसी को भव्यत्व पारिणामिक है, किसी को अभव्यत्व पारिणामिक, वो अनादि अनंत है। जबकि ये संस्कार नया डलता है, वो भावभाषण के काल में पैदा हो जाता है और द्रव्य की योग्यता को बदल देता है, ऐसी बात है। फिर भी द्रव्य के भी धर्म होते हैं, द्रव्य के भी धर्म होती है। शक्तियां अनादि अनंत होते हैं, धर्म अनादि अनंत नहीं होते, क्योंकि वो कैरेक्टर है। ये द्रव्य का एक नया कैरेक्टर हो गया, वो बात है। अकॉर्डिंग टू साइंस प्रॉपर्टीज अलग चीज है, कैरेक्टर अलग चीज है। जैसे कि ये चूना है, चूना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें की योग्यता छिपी हुई है, उसको द्रव्य के रूप में ले ले। तो इसकी योग्यता क्या है कि वैसे तो छूना पड़ा है तो गर्म नहीं है, उसको स्पर्श करो तो नॉर्मल टेम्परेचर में उसको स्पर्श करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी में डालो उसको, क्या बहुत पानी इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसको स्पर्श करो तो आपको जल जाओगे आप। तो इनकी योग्यता थी, ये चूना का द्रव को लो तो उसका एक कैरेक्टर था, जबकि वही कैल्शियम कार्बोनेट है तो मार्बल में है, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट है और चूना भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन उसको पानी में डालो कुछ नहीं होगा। चूना तो मेल्ट भी होगा, ये तो मेल्ट भी नहीं होगा, इसका मेल्टिंग नहीं होता। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट होने के बावजूद भी चूना नरम होता है और मार्बल कठिन होता है। तो कैरेक्टर अलग अलग होता है, द्रव तो वही वो का वो द्रव है, कैरेक्टर अलग अलग होता है कि नहीं होता है, वो तो पर्यावरण के रूप में नहीं है। चूना तो ठंडा था, पानी में डाला तो ठंडा और ठंडा होना चाहिए था, क्योंकि पानी ठंडा है, लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैरेक्टर ऐसा होता तो मार्बल भी पानी में डालने से ऐसा ही हो जाना चाहिए था। इसलिए एलिमेंट वो का वो होने के बावजूद भी, वो तो एलिमेंट है, CaCO3 तो एलिमेंट है, फिर भी कैरेक्टर अलग अलग होता है कि नहीं होता है। ऐसे जीव तो जीव है, कैरेक्टर बदल गया उसका। साइंस तो ऐसा, साइंस के साइंस की दृष्टि से देखा जाता है, इसकी विजन साइंस की होनी चाहिए। तो गणित की विजन अलग होती है, हम क्या करते हैं द्रव गुण पर्याय में गिनती लगाते हैं, ये साइंस है, इसको साइंस के रूप में देखो, साइंटिफिक विजन होनी चाहिए। नहीं, वो तीनों पारिणामिक भाव है, अनादि अनंत है और तीनों पारिणामिक है, लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक है और जीवत्व शुद्ध पारिणामिक है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध दोनों तीनों पारिणामिक होने पर भी शुद्ध और अशुद्ध इनका कैरेक्टर है। तीनों पारिणामिक है, उसमें जीवत्व है वो शुद्ध पारिणामिक है और भव्यत्व और अभव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक है। तो जीवत्व का जो शुद्धपना है वो इसका कैरेक्टर है और भव्यत्व अभव्यत्व का जो अशुद्ध पारिणामिकपना अशुद्धत्व है वो इसका कैरेक्टर है। पारिणामिक तो पारिणामिक है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है। परंपरा परम पारिणामिक भाव वो जीवत्व पारिणामिक, वो जीवत्व पारिणामिक। भले आप आर्ट्स में पढ़ी हो लेकिन साइंस तो आता ही है, बेसिक प्रिंसिपल तो आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल तो समझ में आता है, वो तो स्कूल में आता है, केमिस्ट्री चालू होती है तब से आ जाता है। हम तो कॉलेज में गए नहीं लेकिन केमिस्ट्री में फंडामेंटल प्रिंसिपल तो समझ में आए ही है। वो बात जरूर थी कि उस वक्त आत्मा का विज्ञान समझ में नहीं था। पुद्गल का विज्ञान तो समझते थे बराबर, जो बात समझते थे वो बराबर समझते थे। तो वो बेसिक प्रिंसिपल तो इसमें भी लागू होता है, क्योंकि वो भी पदार्थ है, वो भी पदार्थ है, पदार्थ विज्ञान तो सबका सेम होता है ना। सामान्य जिसको अपना स्वरूप का आधार अवलंबन मिला हो, यानी जिसने अपनी शुद्ध सत्ता को ग्रहण कर लिया हो अपनी श्रद्धा में, श्रद्धा का कार्य सत्ता को ग्रहण करने का है, सत्ता को अस्तित्व को, श्रद्धा का कार्य सत्ता को ग्रहण करने का है। तो जो अपना स्वरूप सत्ता को ग्रहण करता है वो श्रद्धा, वो सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रद्धा है, यानी वो सम्यक दृष्टि है। सत्ता में अपनी मौजूदगी, अपनी हयाति, शुद्ध चैतन्य की हयाति जो है, मौजूदगी है शाश्वत, उसको ग्रहण कर लेती है श्रद्धा। है पणा, मैं हूं, मैं मेरे स्वरूप में हूं, तो हूं 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 पद से आस्तिक्य होता है, आस्तिक्य को श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा को आस्तिक्य कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ऐसे ही पूछते हैं कि आपका आस्तिक्य किस में है, श्रद्धा के लिए ऐसा ही पूछते हैं कि आपका आस्तिक्य किस में है। तो अस्थि को ग्रहण करे वो आस्तिक्य है, तो श्रद्धा का कार्य आस्तिक्य ग्रहण, अस्थि को ग्रहण करना उतना ही है। जो द्रव को, द्रव स्वरूप का आस्तिक्य को ग्रहण करता है, करती है जो श्रद्धा, उसको सम्यक श्रद्धा कहते हैं, उसको द्रव दृष्टि कहते हैं। अनादि से ऐसा हुआ नहीं, पर्याय का अस्तित्व ग्रहण किया है, जितनी पर्याय उतना ही माना है, मनुष्य हुआ तो मनुष्य जितना माना, मनुष्य में भी पुरुष हुआ तो उतना ही माना, गृहस्थ हुआ तो उतना ही माना, ऐसा। मिथ्या दृष्टि, पर्याय दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि है, जितने पर्याय है उतना ही माना। कर्म जनित पर्याय को अपने रूप में अवधारण करना श्रद्धा में, तो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि मैं शाश्वत हूं और पर्याय तो साधी शांत है, मैं उतना हूं नहीं, फिर भी माना, वो मिथ्या दृष्टि है मूल में। बाकी तो फिर इसकी परंपरा बहुत चलती है, तो अनेक प्रकार का, असंख्य प्रकार का मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व कितने प्रकार का, असंख्य प्रकार का। सम्यक तो कितने प्रकार का, एक ही प्रकार का। क्या हुआ
प्रश्न जो शुरू थो, प्रश्न जो शुरू थो अनुसनी नहीं
सकते। हाँ बराबर, हाँ द्रव्य ने योग्यता बदला नहीं, ये संस्कार नहीं है, एम थाय से સંસ્કાર નહીં થયા એમ બને છે, દ્રેમાં ફેરફાર થાય. દેખો વો વાત અલગ હૈ. એક પ્રશ્ન કો ફાઈનલ કરે, એક જીવ હૈ ક્રોધ કી પ્રકૃતિ સે બહુત ક્રોધ બાર બાર કરતા હૈ ઓર ઉસ દ્રવ મેં ક્રોધ કા સંસ્કાર ડલ જાતા હૈ. વિભાવ કા સંસ્કાર હોને સે હમેશા નહીં રહેતા હૈ, અનંત કાલ તક નહીં રહેતા હૈ, ક્યોંકિ વિભાવ ઉતના તાકત વાલા ભી નહીં હૈ. વિભાવ ખુદ હી અનિત્ય હૈ, જબકે સ્વભાવ નિત્ય હૈ, ઇસલિયે ઇસકા સંસ્કાર નિત્ય રહેતા હૈ. તો દૂસરે ભાવ મેં તો સર્પાધિક હોતા હૈ, વહાં બિના મતલબ ઉસકો ક્રોધ ક્યો આતા હૈ? તો ઉસકા સંસ્કાર એસા હો ગયા. ये चार संज्ञाएं क्या है? चार संज्ञा है वो क्या है? जीव का विभाव संस्कार है. एक बच्चा जन्म लेता है और माँ का स्तन से माँ का दूध पीता है, कौन सिखाता है इसको? सीखने के लायक भी कहाँ है? सिखाना चाहे तो कोई सीखने के लायक होता है? जो एक घंटा का अभी तो आयु हुआ हो, दो चार घंटे का आयु हुआ हो, माँ का दूध पीने लगता है कि नहीं? उसका पूर्व संस्कार है. आहार करना ये इसका संस्कार है. तो वो द्रव ऐसा हो गया, उसका संस्कार से वो परिणमन करने लगता है. जैसे सर्प ने क्रोध कर लिया तो हर वक्त तो क्रोधित नहीं होता है, लेकिन जब भी किसी को काटता है तो क्रोध आता है, तब काटता है. बिना मतलब क्रोध क्यों आया उसको? तो चींटियां दो तरह की होती है, लाल और काली, दोनों के संस्कार अलग अलग है. चींटियां तो चींटियां है, तो काटेगी और एक नहीं काटेगी. एक में क्रोध का संस्कार है, एक में क्रोध का संस्कार नहीं है. ऐसे संस्कार के तो बहुत सबूत है. तो द्रव को ऐसी योग्यता धारण कर लेता है, वो योग्यता बाहर आती है तब पता चलता है कि इसकी योग्यता थी तो ये हुआ. बाकी सर्वज्ञ जानते हैं और छद्मस्त को तो बाहर आते आने से पता चलता है. जैसे कि निसर्गात अधिगमात वा, अधिगम मैंने निमित्त देवगुरु का, बिना निमित्त निसर्गात जो सम्यक दर्शन हुआ, क्यों हुआ? संस्कार से हुआ. संस्कार के तो बहुत सबूत है. वो चारों संज्ञा है, वो संस्कार रूप है, वो अपने काल में पैदा होती है. हर वक्त उसकी पर्याय नहीं होती है, लेकिन अपने काल में बाहर आती है. भाई संज्ञा तो भाई क्यों होता है? वो संस्कार पड़ा है इसलिए होता है. कल्पना हो करके भयभीत हो जाएगा, कभी कभी कल्पना में भी भयभीत हो जाएगा. बारक में कुछ नहीं, वो भय का कारण ही नहीं है, फिर भी भयभीत हो जाएगा. वो द्रव की योग्यता है. हाँ, कैरेक्टर ऑफ दी सब्सटेंस द्रव की योग्यता है. द्रव की योग्यता द्रव के रूप में होती है.
कभी भी उत्पन्न हो सकती है.
हाँ, गुण की योग्यता गुण के रूप में होती है। देखिए चारित्र गुण में राग रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं है, है?
नहीं।
तो कोई वितरागी नहीं होगा। फिर भी अनादि काल से जब तक तो पूर्ण वितराग क्षीणमो गुण स्थान नहीं हो गए बारवा, वहां तक जीव के चारित्र गुण में राग होता है। क्यों? राग की योग्यता है। गुण में राग करने की शक्ति नहीं है, चारित्र गुण में राग करने की शक्ति
नहीं है,
लेकिन राग करने की योग्यता है तो राग होता है। ये गुण की योग्यता है, गुण के रूप में है। द्रव की योग्यता द्रव के रूप में है, पर्याय की योग्यता पर्याय के रूप में होती है। अच्छा, योग्यता का प्रकरण बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और बहुत गहरा भी है। हैं?
आप आदि को लिखने वाले
थे? हैं?
लेख लिखने वाले थे ना
आप? हाँ, वो यथार्थता में लिखने, यथार्थता के विषय में लिखने वाले हैं, यथार्थता के विषय में लिखने वाले हैं।